हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दादा महाराज ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई खूबसूरत कमरा बनवाया होगा, तो इसीलिए वो जल्दी ही उस कमरे में जाने लगा। और जैसे ही वो कमरे में गया और उसने वहां जाकर अपनी खूबसूरत बेटी को देखा, थोड़ी देर पहले जो गुस्सा आ रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई और कहीं ना कहीं अमन सोचने लगा कि अपनी खूबसूरत और प्यारी बेटी के लिए वो 21 वर्षों के लिए तो क्या 21,000 वर्षों तक भी किसी की गुलामी कर सकता है। तभी तारा ने अचानक अपने हाथ अमन के हाथ पर रख दिए और वो कहने लगी, आप इस तरह से क्या सोच रहे हैं? तभी अमन ने तारा को मनाते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अपनी बेटी को काली शक्तियों से कैसे बचाऊँ, कैसे अपनी बेटी की रक्षा करूँ। अब वो काफ़ी ज़्यादा असहाय हो चुका था और जल्दी जल्दी में वो काली शक्तियों के महागुरु के पास पहुँचा और एक बहुत बड़ा निर्णय ले चुका था, जिसकी वजह से काली शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो चुकी थीं। लेकिन अब वो सोचने लगा कि अगर वो 21 वर्षों तक काली शक्तियों के महागुरु की गुलामी स्वीकार कर लेता है तो उसकी बेटी पर जो खतरा है वो हमेशा के लिए टल जाएगा, वरना हमेशा के लिए काली शक्तियाँ उसकी बेटी की दुश्मन बनी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बात उसने अपने दादा महाराज से करने के बारे में सोच ली थी और जल्दी ही वो लोग दादा महाराज से विदा लेकर अपने घर की ओर रवाना हो चुके थे। तभी दादा महाराज अमन की आंखों में कितने ही सारे सवाल देख चुके थे, तो वो सोचने लगे, आखिरकार अमन ने पूरी बात क्यों नहीं बताई है? क्योंकि अगर वाकई अमन ऐसा कुछ सोच रहा है तो वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि 21 वर्षों तक गुलामी की अमन को कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि अमन उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी काली शक्ति के महागुरु की गुलामी करे। लेकिन फिलहाल वो कुछ सोचकर चुप हो गए थे। जल्दी ही तारा तराना को लेकर बंगले में पहुंची, तो अचानक से वो राक्षस शस्त्र जो पहले से ही इंतज़ार कर रहा था पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिसके द्वारा वो शॉल की शक्तियों के ताप को सह सकता था। तराना के उस बंगले में आते ही वो उसे घूर कर देखने लगा था। तारा को इस बात का एहसास हो गया था कि ज़रूर इस वक्त कोई ना कोई शक्ति उसके आसपास है जो उसे या उसकी बेटी को घूर रही है। और अभी तारा इस बात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक जिस जादुई शॉल में तराना लिपटी हुई थी उसमें आग लगनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही शॉल में आग लगनी शुरू हुई, अमन और तारा दोनों ही चिल्ला पड़े थे, क्योंकि उस शॉल में ही तराना लिपटी हुई थी। तभी करिश्मा और अमरेंद्र जी दोनों वहां आए। अचानक करिश्मा जी ने अपना जिन का वेश बदल लिया था और उस जादुई शॉल की आग को खत्म करने के लिए करिश्मा जी ने अपने मुंह से कुछ अलग तरह के पानी के गोले फेंकने लगे थे ताकि वो शॉल की आग को बुझा सके, लेकिन शॉल की आग बुझने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। अब तारा पूरी तरह से डरने लगी थी, क्योंकि वो इस तरह से अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने आग में जलते हुए नहीं देख सकती थी, और करिश्मा और साथ साथ अमरेंद्र जी सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे तराना को किसी भी मुसीबत में नहीं देखना चाहते थे। वही राक्षस शस्त्र जिसने उस शॉल में अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा आग लगा दी थी, अब वो जोरों से हंसने लगा था। तभी अमन ने अपनी तिलिस्मी कड़े का प्रयोग करते हुए उस शॉल की आग में हाथ दे दिया था और वो बस अपनी बेटी को उसमें से निकालना चाहता था, लेकिन अमन के तिलिस्मी पत्थर और कंगन की भी कोई आग उस शॉल को नहीं बुझा पाई थी। तब तारा पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ये आग जरूर राक्षस की शक्तियों से लगाई गई है, तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए तारा ने सोचा कि उसे अपनी परी वाली शक्ति का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने इस तरह देर कर दी तो उसकी बेटी उस जादुई शॉल के साथ साथ अपनी जान भी गंवा सकती थी जो कि उस राक्षस के शस्त्र ने लगाई थी। तभी अचानक तारा परी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखें बंद करके उसने कुछ रंग बिरंगी रोशनी अपनी आंखों से निकालकर उस जलती हुई शॉल पर डालनी शुरू कर दी, और देखते ही देखते आग भी कम होने लगी, क्योंकि तारा के पास ही ऐसी शक्तियां थी जिसके बदौलत वो अपनी बेटी को उस आग से बचा सकती थी। तभी वो राक्षस का शस्त्र तारा को बुरी तरह से घूरने लगा और वो समझ चुका था कि तारा परी उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं करिश्मा जी ने जैसे ही तारा की आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखा तो वो तुरंत अमन के सामने आ गई थी ताकि अमन और अमरेंद्र जी को तारा का ये रूप दिखाई ना दे। उस रक्षा के शस्त्र द्वारा लगाई गई आग जैसे ही बुझी तब वो राक्षस वहां से गायब होकर सीधा उस राक्षस की माँ के पास पहुंच चुका था और वहां जाकर उसने बता दिया था कि उसने जादुई शॉल को नष्ट कर दिया है। अब बहुत जल्द वो जिन के वंशज का अंत कर देगा। वैसे भी वो एक मामूली सा बच्चा है, जब तक 12 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक वो एक मामूली बच्चा ही रहेगा और उसके बाद शायद उसमें कुछ शक्तियां आ जाएं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद मैं उसका खून कर सकता हूँ, ऐसे कहकर वो जोरों से हंसने लगा। तब कहीं ना कहीं राक्षस की माँ गुस्से से उसे घूरते हुए कहने लगी थी, तुम्हें इस तरह से वहां से नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आज ही जिन वंश का खत्म कर देना चाहिए था। तब वो राक्षस का शस्त्र कहने लगा था, मैं बहुत जल्द जिन वंशज का अंत कर दूंगा। वैसे भी वो एक मामूली सा बच्चा है, जब तक 12 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक वो एक मामूली बच्चा ही रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद मैं उसका खून कर सकता हूँ, ऐसे कहकर वो जोरों से हंसने लगा। वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन में सभी अब तराना की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे तराना को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि अभी इस वक्त करिश्मा जी पूरे जिन रूप में थी, जिसकी वजह से उनका शरीर का आकार काफी ज्यादा बढ़ चुका था। करिश्मा लगातार अपनी आंखों से निकलती रंग बिरंगी रोशनी का प्रयोग कर रही थी ताकि वो उस जादू को खत्म कर सके, और देखते ही देखते वो आग पूरी तरह से बुझने लगी थी। तारा ने आगे बढ़कर जल्दी ही अपनी जिन अंश यानी तराना को गोद में ले लिया था। अमन ने देखा कि उस आग ने तराना का बाल भी बांका नहीं किया था। भले ही वो शॉल पूरी तरह से जल चुकी थी लेकिन तराना बिल्कुल ठीक थी और वो तारा परी को देखते ही मुस्कुराने लगी। वहीं तराना को ठीक देखकर सबकी जान में जान आ गई थी, और वैसे भी काली शक्तियों का जो शस्त्र था उस शस्त्र का मकसद आज सिर्फ उस शॉल को नष्ट करने का था, जिस शॉल में वो जिन अंश सुरक्षित रहने वाली थी, और कल ही वो तराना का खून करने वाला था, क्योंकि अगर वो इस तरह से सबके सामने तराना को मारने की कोशिश करता तो ये उसकी जान उल्टा खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि भले ही वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन तारा परी उसे आसानी से देख सकती थी, इसीलिए वो वहां से गायब हो चुका था। उसके गायब होने के बाद करिश्मा जी भी अपने सामान्य रूप में आ गई थी और तराना के पास आ गई, और अमन तुरंत घबरा कर उसके पास आकर कहने लगा, ये सब क्या था माँ, और मेरी शक्ति काम क्यों नहीं की, और आपकी शक्तियों ने कैसे इस तरह तराना को बचा लिया। तभी करिश्मा जी भी अमन से कहने लगी थी कि मेरी भी किसी शक्ति ने तराना को नहीं बचाया है, बल्कि इसे इस वक्त उसकी माँ की परी वाली शक्तियों ने बचाया है।
लेकिन कहीं ना कहीं अमन को और अब बाकी सबको तराना की चिंता पूरी तरह से होने लगी थी। जिस जादुई शॉल में वो सुरक्षित थी अब वो शॉल उस पर से हट चुकी थी, तो तराना की जान को पूरी तरह से खतरा हो चुका था, और कहीं ना कहीं तराना अब बाल बाल बची थी। फिर यही सोचते हुए वो तीनों के तीनों पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे तराना को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। तभी करिश्मा जी ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा था, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात तुम्हारी शक्तियां न प्रयोग करने की, ज़रूर इस बार काली शक्तियों के महागुरु ने किसी ऐसे शस्त्र को हमारे पास भेजा है जिससे जिन महाराज की शक्ति उस पर काम न कर पाए, तो फिक्र मत करो, इसका जवाब हमें दादा महाराज ज़रूर देंगे, और हम कल ही दादा महाराज से मिलने के लिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल आज की रात हमें कड़ा तप करना होगा जिससे कि हम जादुई शॉल को एक बार फिर पुनर्जीवित कर सकें, क्योंकि अगर हमने बिना जादुई शॉल के तराना को रखा तो एक बार फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि तराना के इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, और केवल 12 दिनों की ही बात है। ऑलरेडी एक दिन भी पूरा हो चुका है, और जैसे ही 12 दिन पूरे होंगे उसके आप पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर पाएगी, तो तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ऐसा कहकर करिश्मा जी अमन को सांत्वना देने लगी थीं, और तभी अमन गुस्से से वहां से चला गया था, क्योंकि अपनी बेटी पर हुए हमले को वो नहीं रोक पाया था, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि काली शक्तियों का महागुरु उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो अपनी बेटी पर हुए हमले को नहीं रोक पाया है। तो अमन इस तरह से अब कुछ और सोचने पर मजबूर हो गया था। हालांकि अमन को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि ये सारी शक्तियां काली शक्तियों के महागुरु की शक्तियां नहीं थीं, बल्कि वो परीलोक में कैद राक्षस की शक्तियां थीं, जिसने कितने ही सालों से तारा परी को परेशान करके रखा हुआ था। अमन कितनी देर तक अपनी प्यारी सी बेटी तराना को देखता रहा था। तारा परी, जिसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तराना की जान बचाई थी, उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी, इसीलिए तराना को अपनी गोद में भरकर वो बिस्तर के एक सिरे पर बैठ गई थी, और जैसे ही अमन वहां आया वो कितनी ही देर तक अपनी प्यारी सी बेटी तराना को देखता रहा था। कहीं ना कहीं इस वक्त अमन के दिलो दिमाग में काफी सारी जंग चल रही थी और रह रहकर उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि काली शक्तियों का महागुरु उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए तो वो काली शक्तियों के महागुरु की लगाई हुई आग को बुझा नहीं पाया। अब उसे बहुत ही ज्यादा अपनी बेटी को लेकर डर लगने लगा था, क्योंकि जब से अमन बाप बना था उसके अंदर के इमोशंस कुछ अलग ही तरह के हो गए थे, तो इसीलिए उसके मन में काफी सारी हीन भावनाओं ने जन्म ले लिया था। अब अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपने वंशज की रक्षा कैसे करे। जिस तरह से आज उस पर हमला हुआ था उससे अमन काफी हद तक डर गया था। हालांकि अमन ने आज तक डरना नहीं सीखा था, लेकिन जब से उसकी बेटी हुई थी तब से तारा और अमन दोनों के ही विचार काफी ज्यादा बदल चुके थे, क्योंकि पहले तो सिर्फ मौत का खतरा था, लेकिन अब उन्हें अपनी बेटी की मौत का खतरा नजर आने लगा था। अब अमन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि उसे अब जिन अंश के लिए काली शक्तियों के महागुरु की गुलामी कबूल कर लेनी चाहिए, कम से कम उसकी बेटी तो सेफ रहेगी। इसके लिए वो तारा से बात करने की हिम्मत जुटाने लगा था। वहीं दूसरी ओर परिलोक में वो राक्षस बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी जादुई शक्तियों ने जादुई शॉल का अंत कर दिया था, तो उसकी खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था और वो जोरों से हंसने लगा था। और जैसे ही रानी माँ ने राक्षस को हंसते हुए देखा तो वो तुरंत उसके पास आई थी और कहने लगी थी, तुम्हारे इस तरह से हंसने का क्या कारण है? तभी उस राक्षस ने कहना शुरू कर दिया था, बहुत जल्द तुम्हारे जिन अंश का अंत होगा, जिसके बलबूते पर तुम लोगों ने मुझे पूरे 2 वर्षों तक कैद करके रखा था, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा और उसके बाद मैं क्या तबाही मचाऊंगा इसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकोगे। ऐसे कहकर वो जोरों से हंसने लगा था। अब रानी माँ का दिल अंदेशों से भर उठा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे जिन अंश की रक्षा कैसे करें। वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र और करिश्मा जी दोनों ही कड़े तप में बैठ चुके थे ताकि वे एक बार फिर जादुई शॉल का निर्माण कर सकें, लेकिन इतनी जल्दी जादुई शॉल का निर्माण नहीं होने वाला था, ये बात वे अच्छी तरह से जानते थे। वहीं दूसरी ओर रानी माँ के पास जिन अंश की रक्षा करने का सिर्फ एक ही तरीका था और उसके लिए उसे अपनी बेटी सितारा परी की मदद चाहिए थी। और हालांकि सितारा परी ने उनसे माफ़ी मांगी थी और साथ ही साथ इस बात का यकीन दिलाया था कि वो अब बदल चुकी है, तो इसीलिए वो अब उनकी मदद करना चाहती है, तो इसीलिए रानी माँ ने मजबूर होकर कारावास का दरवाज़ा खोल दिया था।